الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. آپ لوگوں کوئی شور وغیرہ تو نہیں محسوس ہو رہا؟ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اس میں بہت شور آ رہا ہے، میں اس کو بند کر دوں. ذرا چلیں، خیر مجھے خود شور محسوس ہو رہا تھا اس وجہ سے. تو اس کلاس کے اندر ہم تسہیل بہشتی زیور سے کتاب السلوک والاحسان پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر جو پہلا عنوان تھا اخلاق ذمیمہ اور ان کا علاج، یہ ہم نے پڑھ کے مکمل کر لیا تھا. اور اس کے بعد پھر آج کل ہم اخلاق حمیدہ اور ان کے حصول کے طریقے یہ پڑھ رہے تھے. اخلاق حمیدہ اور ان کے حصول کے طریقے، اس میں سب سے پہلے حضرت نے توبہ اور اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ اخلاق ذمیمہ سے جب ہم یو ٹرن کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، تو اس کے بعد پھر اخلاق حمیدہ صحیح معنوں میں ہمارے اندر پیدا ہو سکیں گے. اس وجہ سے توبہ کو ٹرننگ پوائنٹ، توبہ کو ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر سب سے پہلے ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد خوف خدا اور اس کا طریقہ، کیونکہ توبہ کے اوپر پھر قائم رہنا، یعنی آپ نے یو ٹرن کر لیا ہے اللہ کی طرف، اب آپ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اسی راستے کے اوپر قائم رہنے کے لیے اب آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے گاڑی جب آپ نے یو ٹرن کر لی، تو اب جس منزل کی طرف آپ گاڑی بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس منزل پر چلنے کے لیے گاڑی کو فیول کی ضرورت پڑتی ہے، ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ایندھن نہیں ہوگی تو یو ٹرن کرنے کے بعد آپ وہیں کھڑے رہیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایندھن آگے بڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خوف خدا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اور اس کے بعد پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے امید. ٹھیک ہے، تو امید اور خوف جو ہے نا، یہ ایندھن ہوتے ہیں جو کہ ایک ایمان والے کی گاڑی کو بڑھاتے رہتے ہیں اس کے پروردگار کی طرف. اگر خوف نہ ہو یا امید نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ گاڑی چلتی نہیں ہے. اور جب کوئی گاڑی چلتی نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ یا تو وہ کھڑی رہے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے کہ صرف گاڑی کھڑی نہیں رہتی ہے، بلکہ پیچھے سے نا اس کو پل بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو کھینچا بھی جا رہا ہوتا ہے. تو تصور کریں تھوڑا سا کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ یو ٹرن کر کے ایک جگہ پہ کھڑی ہو گئی، اب آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے نا، کوئی فورس اس کے اندر نہیں ہے جو کہ اس کو آگے بڑھائے، تو پیچھے سے بھی ایک فورس ہے جو کہ اس کو واپس کھینچنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، واپس کھینچنے کی بھی کوشش کر رہی ہے. یہ کون سی فورس ہے؟ یہ شیطان کی فورس ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آگے کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی فورس نہیں ہوگی آپ کے اندر، تو پیچھے سے کھینچنے والی فورس تو اپنا کام کر رہی ہے، تو پھر وہ آپ کو واپس یو ٹرن کروا دے گی. ٹھیک ہے نا، واپس یو ٹرن کروا دے گی، اور پھر آپ اسی راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے کہ جس راستے پہ پہلے چل رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا، پھر انسان کو اس راستے پہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. توبہ کا راستہ، توبہ کے راستے پہ قائم رکھنے کے لیے خوف خدا، امید، صبر. ٹھیک ہے، صبر اور استقامت. تو حضرت نے پھر اسی ترتیب میں ان چیزوں کو یہاں پہ لکھا ہے. اور صبر کے بعد پھر شکر، ठीक है, अब सारी चीजों को एक साथ तो नहीं लिख सकते है ना, जिंदगी में तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। ये नहीं होता कि पहले जो है वो खौफ खुदा आ गया, फिर उसके बाद जो है वो उम्मीद खुदा आ गई, फिर उसके बाद जो है वो सबर आएगा, फिर उसके बाद जो है वो शुक्र आएगा। नहीं, जिंदगी में ये तरतीब नहीं होती, ठीक है। लेकिन किताब में जब लिखेंगे तो सबको एक साथ गड़बड़ करके तो नहीं लिख सकते ना, तो इस वजह से पहले एक चीज को लिखना पड़ता है, फिर दूसरी चीज को लिखना पड़ता है, फिर तीसरी चीज को लिखना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा ना समझे कि नहीं, जब तक मैं खौफ नहीं होगा मेरे अंदर तो उस वक्त तक उम्मीद नहीं आ सकती, और जब तक उम्मीद नहीं आएगी उस वक्त तक सब्र नहीं आ सकता, और जब तक सब्र नहीं आ सकता तो उस वक्त तक शुक्र नहीं आ सकता। ऐसे नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद तवक्कुल और उसका तरीका, तो तवक्कुल भी बेहतरीन अखलाक में से एक खुलुक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अपने आप को हवाले करना, तवक्कुल करना, ठीक है। फिर अल्लाह ताला से मोहब्बत और उसका तरीका, कितनी प्यारी प्यारी बातें। यानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर सारे ज्यूल्स इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है ना, सारे गौहर और मोती यहाँ पर इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है। तवक्कुल और उसका तरीका, फिर अल्लाह से मोहब्बत और उसका तरीका, फिर अल्लाह के हुक्म पर राजी रहना और उसका तरीका। इसके बारे में बड़ी तफसील से पिछली ही क्लास के अंदर बात हुई थी, अल्लाह के हुक्म पर राजी रहना और उसका तरीका। अल्लाह का हुक्म क्या होता है? दो किस्म के अल्लाह ताला के हुक्म होते हैं। एक हुक्म क्या होता है जी, कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए फैसला फरमा दिया, ठीक है ना, यानी जिसको कि हम तकदीर के मानी में लेते हैं, जिसको कि हम नसीब के मानी में लेते हैं। हमारे नसीब में अल्लाह ताला ने लिख दिया कि जी इसको जो है ना वो दो लड़कियां होंगी, नसीब में लिख दिया, ठीक है ना, अब लड़का नहीं होगा इसको, ठीक है, ये अल्लाह का हुक्म है, इसको दो लड़कियां होंगी। किसी के नसीब में अल्लाह ने लिख दिया तीन लड़के होंगे, अब वो बेटी को रो रहा है, बेटी क्यों नहीं होती, बेटी क्यों नहीं होती, है ना। जैसे बहुत सारी माएं जो हैं उनके यहाँ जब बेटे हो जाते हैं ना तो फिर वो रोती है, हाय अगर बेटी होती तो मेरी मदद करती, हाय अगर बेटी होती तो मैं उससे अपने दिल का हाल कहती, ठीक है ना। बेटे हो गए, बेटी नहीं हुई, है ना। जिनको बेटियां हो जाती हैं वो रोती रहती हैं कि हाय बेटा होता तो फिर जो है वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता, है ना, पुराने जमाने की बात है बुढ़ापे का। आजकल जो है वो बेटियां बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए उनको तैयार किया जाता है। हमारे एक दोस्त जो थे वो भी पिछले दिनों ना इंडिया से आ रहे थे, तो जब जब एयरपोर्ट पे पहुंचे ना तो उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट के ऊपर एक हिंदी के अंदर साइन लिखा हुआ है, तो उस साइन की उन्होंने तस्वीर खींच करके मुझे भेज दी व्हाट्सएप के ऊपर कि देखें इस साइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अपनी बेटियों को तुम पढ़ाओ, ठीक है, अपनी बेटियों को तुम पढ़ाओ ताकि ये बेटियां बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बने, ताकि ये बेटियां बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बने, इस वजह से इन बेटियों को पढ़ाओ, ठीक है। तो हमने कहा कि पहली बात तो ये कि इनको अपने बेटों से कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो बुढ़ापे में इनका सहारा बनेंगे, ठीक है ना, तो इस वजह से ना अब इनके पास खाली बेटियां ही रह गई हैं कि उनको पढ़ाओगे तो वो बेटियां ही सहारा बनेंगी। वैसे तो बेटियां भी सहारा नहीं बनती, ठीक है ना, जब सहारे नहीं बनने होते हैं, अल्लाह ताला ने सहारा नहीं बनाना होता ना, तो ना बेटी सहारा बनती है ना बेटा सहारा बनता है। लेकिन ये तो जुहला की सोच है, ये लिखने वाला कोई जाहिर है अकलमंद इंसान तो नहीं होगा, ये तो कोई बेवकूफ़ किस्म का हिंदू मुशरिक या फासिक व फाजर मुसलमान होगा जिसने इस किस्म की बात वहां पे लिख करके लगाई हुई है हिंदी जुबान के अंदर। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हिंदू तो हिंदू मुसलमान की भी यही सोच है, ठीक है ना, हिंदू तो हिंदू मुसलमान की भी यही सोच है, बल्कि बदकिस्मती मजीद ये कि अब तो दीनदार मुसलमानों की भी यही सोच हो गई है कि बेटियों को इसलिए पढ़ाओ ताकि वो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बने, शादी मत करने देना देना उनको, ठीक है ना, शादी करके अपने घर की हो जाए, उनका घर जो है वो आबाद हो जाए, ये नहीं, बल्कि उनको पढ़ाओ ताकि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। तो बहरहाल, तो अल्लाह के हुक्म पे राजी रहने का मतलब क्या कि अल्लाह ताला ने बेटियां दी हैं तो बेटियों पे राजी रहना, अल्लाह ताला ने बेटे दिए हैं तो बेटों पे राजी रहना, और अल्लाह ताला ने अगर कुछ भी नहीं दिया तो उसके ऊपर राजी रहना, ठीक है ना भाई। अल्लाह ताला ने यहाँ नहीं दिया वहां तो देगा ना, मैं अल्लाह ताला को राजी रखूं तो अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर मुझे सब कुछ दे देना है। तो एक तो मानी होता है अल्लाह के हुक्म का कि अल्लाह ने जो नसीब हमारा ठहरा दिया है, दूसरा अल्लाह के हुक्म का क्या मानी होता है कि उसके ऊपर राजी रहना, ये चले आप बता दें, कुछ आप भी पार्टिसिपेट करें क्लास के अंदर, या जो तो बोलते ही रहता है, ठीक है। तो दूसरा क्या बताया था अल्लाह के हुक्म पे राजी रहने का मतलब? क्विज भी होना चाहिए ना पिछली क्लास का। अल्लाह के हुक्म पे राजी रहने का दूसरा मतलब क्या होता है? सिचुएशन के साथ फ्रस्ट्रेट ना हो। नहीं, आप लगता है देर से आई हैं क्लास में, आपने बात नहीं सुनी। ये तो हम बयान कर चुके हैं अभी अभी, सिचुएशन के साथ फ्रस्ट्रेट ना होना। ठीक है, सिचुएशन उसी को नसीब कहते हैं, ठीक है ना, जो अल्लाह ताला ने सिचुएशन बना दी। तो नसीब के ऊपर फ्रस्ट्रेट ना होना, ये तो हो चुका। दूसरा क्या है? फराइज। ठीक है, जैसे उन्होंने लिखा फराइज, यानी अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिए हैं ना, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो दिल बुरा ना करना कि क्या मुसीबत है, 5 नमाजें क्या मुसीबत है, चैन से काम भी नहीं करने देते, चैन से सोने भी नहीं देते, ठीक है, चैन से जो है वो शाम को शादी अटेंड नहीं करने देते, इशा की नमाज भी पढ़नी जरूरी है। ठीक है ना भाई, अल्लाह ने हुक्म दिया है ना 5 नमाजें, तो उनके ऊपर राजी रहना कि हाँ ये मेरे हक में है, ये मेरे फायदे में है। और खुसूसन खवातीन के लिए फिर पर्दे का भी हुक्म, ये नहीं कि क्या मुसीबत है पर्दा करना, क्या मुसीबत है कहीं पे मुंह खोल करके जो है वो खाना भी नहीं खा सकते, और क्या मुसीबत है कि इससे भी ना मिलो और उससे भी अलग रहो और ऐसे भी ना करो ऐसे भी ना करो, ठीक है ना। नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म है तो उसके ऊपर राजी रहना कि यही मेरे हक में बेहतर है, अल्लाह का हुक्म मेरे हक में बेहतर है। ठीक है, तो याद है, याद रहेगा, अगली क्लास में पूछेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जस्ट सारे भूल गए क्या बात हुई थी। अच्छा, तो बहरहाल अल्लाह के हुक्म पे राजी रहना, उसका तरीका ये हम पढ़ चुके। फिर उसके बाद सिद्क यानी सच्ची नीयत और उसका तरीका, तो ये भी हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था, या इसकी इसके ऊपर मेरे ख्याल में बात नहीं हुई थी। सिद्क नीयत, सिद्क यानी सच्ची नीयत और उसका तरीका, ये हाँ ये हो गई थी। इसमें वो जो फकीर पीछे लग जाते हैं और उनसे जान छुड़ाने के लिए उनको पैसा दे दिया वगैरह, ये सारी बातें हुई थी। तो इसमें बस एक चीज जो है वो मजीद या जस्ट रिमाइंड करवाना चाहेगा आपको, वो ये है कि नीयत को सच्चा रखना जो है ना, इसके लिए इंसान को अपने दिल के बारे में कॉन्शियस होना पड़ता है। ठीक है, इंसान का ध्यान अपने दिल की तरफ रहे कि उसके दिल के अंदर क्या नीयत है। ठीक है, क्योंकि नीयत जो है ना, ये दिल का फेल है, ये दिल के करने की चीज है ना। तो अगर कोई इंसान जो है ना वो अपने दिल की तरफ से गाफिल होगा ना, तो वो अपनी नीयत को सही नहीं रख सकेगा। ठीक है, तो यानी एक 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 तवज्जो इंसान की नीयत की तरफ होनी चाहिए कि मेरी इस वक्त इस काम के अंदर क्या नीयत है। बेध्यानी में जो हम काम करते हैं ना, तो इससे एक तो नुकसान ये होता है कि अगर हम कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं ना, लेकिन हमने अच्छी नीयत नहीं करी हुई है, तो वो काम जो है वो जाया हो जाता है। ठीक है ना, अगर आपने अच्छी नीयत नहीं करी हुई है तो काम बेशक अच्छा हो लेकिन वो काम जाया हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक अच्छा काम यह है कि आप गरीब को खाना खिला रहे हैं, ठीक है, लेकिन गरीब को खाना खिलाने में आपकी नीयत ये नहीं है कि मुझे सवाब मिलेगा, आपकी नीयत ये नहीं है कि मैं अल्लाह को राजी करने के लिए इस गरीब को खाना खिला रही हूं, या आपकी नीयत ये नहीं है कि मैं इस गरीब की तकलीफ को दूर करने के लिए इसको खाना खिला रही हूं। ठीक है ना, अब आप ये कहेंगी कि भाई यही तो नीयतें होती हैं किसी गरीब को खाना खिलाने के लिए, तो इस हादिस का जवाब ये होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि गरीब को खिलाने के लिए सिर्फ यही नीयतें होती हैं। गरीब को खिलाने के लिए एक नीयत ये भी तो हो सकती है ना कि मुझे किसी ने हुक्म दिया है, मेरे बॉस ने हुक्म दिया है या मेरे अब्बा ने हुक्म दिया है कि जाकर के उसको गरीब को खाना खिलाओ। ठीक है, तो अब अब्बा ने हुक्म दिया है तो मजबूरी है, मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है ना, मैं इससे बेहतर भी कोई काम कर सकती थी और मेरे फलाने काम अटके हुए हैं, फलाने काम रुके हुए हैं, क्या मुसीबत है, अब्बा के हुक्म की वजह से मुझे जा करके गरीब को खाना खिलाना पड़ रहा है। तो आप खाना तो फिर भी खिला रही हैं क्योंकि ऊपर से अब्बा का डंडा है, नहीं खिलाएंगी तो डांट पड़ेगी। तो खाना तो फिर भी खिला रही है, अमल तो कर रही है ना खाना खिलाने का, लेकिन चूंकि नीयत जो है वो अल्लाह की रजा की नहीं है, इस वजह से ये नेकी का अमल ये कबूल नहीं हो रहा, ठीक है ना, इससे आखरत का कोई सवाब नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इस वजह से नीयत की तरफ मुतवज्जे रहना पड़ता है और उसको अल्लाह की रजा की तरफ मायल करना पड़ता है, अपनी नीयत को ना उस तरफ जो है वो फोर्स करना पड़ता है, ठीक है। खुद ब खुद नीयत सही नहीं बन जाती, खुद ब खुद नीयत सही नहीं बन जाती, उसको बनाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अक्सर औकात इंसान जो है ना वो बुरी नीयत के साथ कोई काम कर रहा होता है, ठीक है ना, यानी वैसे पीछे हजरत ने मिसाल लिखी है कि भाई जान छुड़ाने के लिए आपने गरीब को पैसा दे दिया, ठीक है ना, तो ये एक एक बुरी नीयत है कि भाई क्या मुसीबत है, ये लोग जो है वो इंतहाई घटिया किस्म के लोग हैं, दिल में ये सोच रहे हैं कि इंतहाई घटिया किस्म के लोग हैं, गरीब यानी बड़े जलील किस्म के लोग हैं और इनको कुछ करने को नहीं है और ये जो है ना वो मेरा दिमाग खराब करते रहते हैं, ठीक है ना, तो इस वजह से जो है ना बस इनको पैसा दो और जान छोड़ाओ, ठीक है। तो दिल के अंदर जो ये गंदे जज्बात है ना दूसरे इंसानों के बारे में, तो इसी को हम कह रहे हैं कि ये बुरी नीयत है, आपने बुरी नीयत के साथ उसको पैसा दे दिया, ठीक है। तो अपने दिल की नीयत की तरफ इंसान को मुतवज्जे होना पड़ता है, ठीक है ना, वरना इंसान का या तो अमल जाया हो जाता है, जो नेकी का अमल था वो भी जाया हो जाता है, या वो बुरा ही अमल कर जाता है, ठीक है ना, बुरी नीयत के साथ कोई अमल कर जाता है, ठीक है। इसी को हमारे मशायख के यहाँ वकूफ कल्बी कहा गया, वकूफ कल्बी इसी का नाम है कि अपना ध्यान अपने दिल की तरफ रखना और दिल का जो ध्यान है वो अल्लाह की रजा की तरफ रखना, अल्लाह की रजा की तरफ रखना, यही है वकूफ कल्बी। जो लोग नक्शबंदिया सिलसिले के अंदर बैत हैं या नक्शबंदी सिलसिले के औराद वसाइफ करते हैं ना, तो वो अक्सर समझ नहीं पाते कि ये वकूफ कल्बी का क्या मतलब है। वकूफ कल्बी हमारे मामूलात में से एक मामूल है, ठीक है, तो उनको लंबा अरसा हो जाता है नहीं समझ में आता कि वकूफ कल्बी है क्या चीज़। तो फिर से सुन लीजिए कि वकूफ कल्बी का मतलब है कि अपना ध्यान अपने दिल की तरफ रखना और दिल का ध्यान जो है वो अल्लाह की रजा की तरफ रखना, ये है वकूफ कल्बी का मतलब। अच्छा, फिर उसके बाद आखिरी में, ये आखिरी तो अभी नहीं है लेकिन अगला जो उनवान है वो है मुराकबा, यानी दिल से अल्लाह ताला का ध्यान रखना और उसका तरीका, ठीक है। अब मुराकबे का मतलब क्या है कि हजरत फरमाते हैं कि दिल में हर वक्त ये ध्यान रखे कि अल्लाह ताला को मेरे तमाम जाहिरी और बातनी हालात की खबर है, अगर कोई बुरा काम होगा या बुरा ख्याल लाया जाएगा तो अंदेशा है कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में सजा देंगे, इबादत के वक्त ये ख्याल रखे कि अल्लाह ताला मेरी इबादत को देख रहा है इसलिए अच्छी तरह अदा करना चाहिए, ये सोचने से थोड़े दिनों में उसका ध्यान जम जाएगा, फिर इंशा अल्लाह ताला उससे कोई बात अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हजरत ने जो लफ्ज मुराकबा इस्तेमाल किया ना, तो इससे जो नक्शबंदी सिलसिला का मुराकबा होता है ना उसको कंफ्यूज ना करें, ठीक है ना, नक्शबंदी सिलसिले के मामूलात के अंदर जो मुराकबा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को कामकाज से फारिग करके कहीं पे बैठ जाएं और नीयत ये करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और फिर थोड़ी देर उस आवाज को जो दिल से निकल रही है सुनने की कोशिश करती रहे। ये है नक्शबंदी सिलसिले के मामूलात में जो मुराकबा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना उसका मतलब, ठीक है ना, नक्शबंदी सिलसिले के मुराकबे का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन मुराकबे का जो लफ्जी मानी है, लफ्जी मानी मुराकबे का वो क्या है कि गार्ड करना, ठीक है ना, निगहबानी करना, वॉच करना। यहां पर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना वो नक्शबंदी सिलसिले के मामूलात की बात नहीं कर रहे, ठीक ठीक है ना। वैसे भी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक नक्शबंदी सिलसिले से था भी नहीं, चिश्ती सिलसिले से था, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे नक्शबंदी मुराकबे की बात कर ही नहीं रहे, यानी इस्तेलाही नक्शबंदी तरीके की इस्तेलाह में जो मुराकबा इस्तेमाल होता है यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। यहाँ पर लफ्ज मुराकबा के जो लफ्जी मानी होते हैं, डिक्शनरी मानी, उसकी बात हो रही है। और वो क्या है? गार्ड करना, ठीक है ना। जो लोग सऊदी अरब या दीगर अरब ममालिक में रहते हैं उन्होंने शायद नोट किया होगा कि हाईवे जो होती है ना, शाहरा हाईवेज, ठीक है, तो उसके ऊपर अक्सर ये बोर्ड लगा हुआ होता है कि अत-तरीक मुराकब बिल रिडार, ठीक है ना, कि ये जो रास्ता है ना इसको रिडार से गार्ड किया जा रहा है, यानी इसको वॉच किया जा रहा है रिडार मशीन से। कहीं पे लिखा होता है अत-तरीक मुराकब बिल तामीरात, कैमरों से इस तरीके इस रास्ते को गार्ड किया जा रहा है। तो वो क्या होता है कि जो गाड़ियां उस हाईवे के ऊपर चल रही होती हैं ना, अगर वो स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज चली जाए ना, तो ये लोगों के लिए यानी डेंजरस होता है, खतरनाक होता है कि भाई इतनी तेज गाड़ी चलाएगा तो ये एक्सीडेंट करेगा जा करके। तो गवर्नमेंट ने स्पीड लिमिट्स लगाई हुई होती है कि भाई इस वाले रास्ते के ऊपर आप 100 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते, हाईवे के ऊपर 140 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा तेज रफ्तार गाड़ी आप नहीं चला सकते, ठीक है ना। तो अब कौन चेक करेगा लोगों को कि भाई वो तेज चला रहे हैं कि वो ऐसा चला रहे हैं? अगर तेज चला रहे हैं तो उनको पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर फाइन होना चाहिए। तो कौन इतनी लंबी हाईवे के ऊपर उनको गार्ड करेगा, कौन उनको पकड़ेगा? तो उसके लिए ना ये कैमरे लगा देते हैं। तो कैमरा जो है ना वो गाड़ी को देखता रहता है और उसकी स्पीड को कैलकुलेट करता रहता है। जहां वो 140 किलोमीटर से ज्यादा जाएगी, कैमरा उसकी नंबर प्लेट की तस्वीर खींच लेगा और वो तस्वीर जो है वो फिर गवर्नमेंट के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चली जाएगी और फिर इस शख्स को जो है वो 500 रियाल का फाइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैमरा मुराकबा करता रहता है, यानी कैमरा तरीक को हाईवे को गार्ड करता रहता है। उसी तरीके से ये जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर या फिर किसी भी अरब मुल्क में, जैसे कोई बीच हो, समंदर का बीच, तो अब बीच के ऊपर जो है साहिल समंदर के ऊपर लोग नहाने के लिए जाते हैं ना, तो उन्होंने वहां पर फिर कुछ टावर्स बनाए हुए होते हैं जिनके ऊपर वॉच गार्ड बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो वॉच गार्ड जो है ना वो पूरे साहिल समंदर को देख रहे होते हैं कि कहीं पे कोई शख्स जो है ना वो बहुत आगे तो नहीं जा रहा, और कहीं पे कोई शख्स जो है वो कहीं डूबने तो नहीं लगा। अगर कोई डूबने लगेगा तो ये वॉच गार्ड जो है वो फिर पानी में छलांग लगाएगा और जाकर के उसको बचा के लेकर के आएगा। तो ये जो वॉच टावर्स होते हैं ना जिनके अंदर ये वॉच गार्ड बैठे हुए होते हैं, उनको भी मुराकबा टावर लिखा हुआ है, मुराकबा मुराकबा टावर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो वॉच गार्ड है वो वहां पे बैठ करके जो है ना वो आंखें बंद करके सर को झुका करके और ये तसव्वुर कर रहा है कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है। वो मतलब नक्शबंदी सिलसिले वाला मुराकबा बैठ के नहीं कर रहा होता, बल्कि वो क्या कर रहा होता है, वो गार्ड कर रहा होता है पूरे के पूरे साहिल समंदर को, ठीक है। तो यहां पर वही मानी है मुराकबे का कि अपने दिल को हर वक्त गार्ड करते रहो, ठीक है ना, और अब यानी ये सोचते रहो, जहन के अंदर ये ख्याल रखो कि अल्लाह ताला मेरे तमाम जाहिरी और बातनी हालात की से बाखबर है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ अल्लाह ताला को मालूम है, और अगर मैंने बुरा काम किया तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में मुझे सजा देंगे, ठीक है। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमें क्या तरीका बता रहे हैं कि अपनी सोच को मरकूज करो इस नुक्ते के ऊपर कि अल्लाह ताला देख रहा है, अपनी सोच को मरकूज करो इस नुक्ते के ऊपर कि अल्लाह ताला देख रहा है और मेरे तमाम आमाल का जो है ना वो हिसाब किया जा रहा है और मुझसे इनका हिसाब लिया जाएगा, ठीक है। जो इंसान ये कर लेता है तो वो यानी मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है, अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा बंदी बन जाता है, और जो इंसान ये नहीं करता, अपनी सोच को इस बात के ऊपर मरकूज नहीं करता, तो फिर शैतान उसकी सोचों को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। अब जब हम अगली क्लास के अंदर मिसाली बहू की का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उस मिसाली बहू के टॉपिक के अंदर ये बात फिर से आएगी कि ताने बाने बुनते रहते हैं हर वक्त, है ना, हर वक्त जो है वो किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और जो है वो अजम्पशंस करके बैठे हुए हैं कि फलाने ने ये कह दिया होगा, अच्छा मेरे शौहर ने अपनी अम्मी से बात करी है तो यकीनन जो है ना वो मेरे खिलाफ ही बात करी होगी, है ना, मेरे शौहर ने अभी मेरी मेरी सास को फोन किया था तो यकीनन वो मेरे खिलाफ ही बैठ के बात कर रहे होंगे। अब ये सोच रही है क्या बात करी होगी उन्होंने, कौन सी नई जो है वो खिचड़ी तैयार करी होगी, कौन सी नई खीर पकाई होगी मेरे खिलाफ, कौन सा नया मंसूबा होगा कि जिससे कि वो मुझे तकलीफ देंगे और मुझे जो है वो अजियत देंगे, है ना। अब ये सोचे चले जा रही है, मुस्तकिल सोचे चले जा रही है। क्यों सोचे चले जा रही है? क्योंकि इसके जहन के अंदर कोई अच्छी सोच नहीं है, इसका जहन खाली है, इसका जहन फारिग है अच्छी सोचों से। तो शैतान इसको फारिग रहने को थोड़ी देगा, शैतान इसको फारिग रहने को थोड़ी देगा, शैतान तो फिर उसको अपनी गंदी सोचों के अंदर लगाएगा। उन गंदी सोचों की वजह से इसका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, इसको जो है वो शुगर का मर्ज भी होगा, और इसको जो है वो यानी फिर जो है वो गुनाहों की तरफ भी ये मायल होगी, ठीक है ना। और फिर हर वक्त यही ताने बाने बुनते रहेगी कि चलो अब वो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे तो चलो मैं भी उनके खिलाफ कोई ना कोई प्लानिंग करूं, मैं भी उनके खिलाफ जो है ना वो मंसूबे बनाऊं कैसे मैं उनको तकलीफ दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो मुराकबा है ये फिर इन चीजों से इंसान को बचा देता है और इसकी जिंदगी को जो है ना वो पॉजिटिव बना लेता है, मुस्बत बना लेता है, अच्छे कामों के अंदर ये इंसान फिर लग जाता है, बुरे कामों से बच जाता है, ठीक है। कोई सवाल हो अगर किसी को तो वो पूछ लिए यहाँ लिख करके, ठीक है। तो मुराकबे का जो कॉन्सेप्ट है ना ये यहाँ पर जो लफ्जी माने में इस्तेमाल हुआ है ये बेसिकली वकूफ कल्बी ही की, ये बेसिकली वकूफ कल्बी ही है, ठीक है ना। यानी नक्शबंदी सिलसिले में जिस मामूल को वकूफ कल्बी कहा जाता है वो यही है जो कि यहाँ पर हजरत मुराकबे के लफ्ज से बयान किए, ठीक है जी। तो सब मिला जुला एक ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो अब पूछना तो ये चाहिए कि हैव आई कंफ्यूज यू इनफ, है आपको मजीद यानी आपको हमने बहुत अच्छी तरह से कंफ्यूज कर दिया है, तो आप जवाब दें हाँ आपने कर दिया है, ठीक है। तो फिर हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके इस कंफ्यूजन को रिमूव कर दें, हमने तो जितना बिगाड़ना था उतना बिगाड़ दिया, आप अल्लाह ताला उसको संवार दें। वरना ये कि कोई अगर आप स्पेसिफिक सवाल करेंगे तो उसको समझाने की फिर से कोशिश कर लेंगे। अच्छा फिर उसके बाद अगला उनवान हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा, कुरान करीम की तिलावत में दिल लगाने का तरीका, कुरान करीम की तिलावत। इसके अंदर सबसे पहला जो उनवान से रिलेटेड एक नुक्ता जहन में आया है वो ये है कि हमारे मशायख अकाबरीन जो है ना वो इज्जत वाली जो चीजें हैं ना तो उनका नाम जब लेते हैं तो उसके साथ कोई इज्जत वाला क्वालिफायर भी लगाते हैं, ठीक है ना। आप लिखें ना जो भी आपको सवाल है आप लिख दें फिर देखेंगे इंशाल्लाह उसको, अगर उनवान से हट करके भी है तो जो इज्जत वाली चीजें हैं ना उनका जब नाम लेते हैं तो उसके साथ कोई एडजेक्टिव कोई क्वालिफायर भी साथ लगाते हैं, कोई ऐसा लफ्ज लगाते हैं जिससे उसकी मजीद तकरीम हो, ठीक है। तो इस वजह से कुरान का जो लफ्ज है तो उसके साथ करीम लगाएंगे या उसके साथ मजीद लगाएंगे, ठीक है ना, या उसके साथ अजीम लगाएंगे, कुरान अजीम कुरान करीम कुरान मजीद, ठीक है ना। मक्का अल्लाह ताला का जो शहर है मक्का, तो उसको सिर्फ मक्का नहीं बोलेंगे बल्कि मक्कातुल मुकर्रमा बोलेंगे या मक्का मुअज्जमा बोलेंगे, ठीक है ना। मदीना जो नबी अलैहिस्सलाम का शहर है तो उसको मदीना यानी मदीना मुनव्वरा बोलेंगे, ठीक है ना, या मदीना शरीफ बोलेंगे, ठीक है। तो ये यानी एक अच्छी और फायदेमंद आदत है, हमें इसको खुद भी अपनाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने औलादों को भी सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, और उनको सिखाने का तरीका यही है कि खुद इसको इख्तियार करें ताकि वो सुन सुन करके जो है ना वो हमें कॉपी करें। अगर हम खुद जो है वो ऐसे नहीं बोलेंगे तो फिर उनको खाली बोल बोल करके वो नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। तो खुद इनको इख्तियार करें कि जब भी मक्का बोले तो मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा और कुरान मजीद, ठीक है। तो कुरान करीम की तिलावत में दिल लगाने का तरीका फरमाते हैं कि कायदा है कि अगर कोई किसी से कहे कि हमें थोड़ा सा कुरान सुनाओ ताकि हम देखें कि कैसा पढ़ते हो, तो उस वक्त जहां तक हो सकता है पढ़ने वाला खूब बना सवार कर और संभाल कर पढ़ेगा। लिहाजा जब कुरान मजीद की तिलावत का इरादा हो तो दिल में ये सोच लिया करो कि गोया अल्लाह ताला ने हमसे कुरान मजीद सुनाने की फरमाइश की है, ठीक है ना, और ये समझो कि अल्लाह ताला सुन रहे हैं। नीज ये ख्याल करो कि किसी आदमी के कहने से मैं बना सवार कर पढ़ता हूं, तो अल्लाह ताला के फरमाने से तो खूब एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी पहली बात तो ये कि जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं ना, तो ये हम अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से ही पढ़ते हैं। अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई कुरान मजीद नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो अल्लाह ने तौफीक दी, तो इसी को हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन अल्फाज में लिखा कि गोया कि अल्लाह ताला ने फरमाइश करी हमसे कि मुझे मेरा कलाम पढ़ करके सुनाओ, ठीक है ना। इसी वजह से हमारे दिल में ये बात डाली कि तुम कुरान मजीद पढ़ो, और साथ साथ अल्लाह ताला ने ऐसे हालात भी बना दिए कि हम उस दिल के इरादे पे अमल भी कर सकें। वरना ऐसा होता है ना कि आपके दिल के अंदर इरादा पैदा हुआ लेकिन इतनी मसरूफियत है या इतनी मशगूलियत है कि आप कुरान मजीद पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो तौफीक का मतलब सिर्फ दिल का इरादा भी नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला हालात भी बना देते हैं कोई काम करने के, तो आप वो काम कर भी लेते हैं। इसको कहते हैं अल्लाह की तौफीक। तो भैया अल्लाह ही की तरफ से आई ना, तो ऐसे ही दिल के अंदर सोचे कि मेरा अल्लाह मेरे कुरान मजीद की तिलावत को सुन रहा है, तो मुझे कितना ज्यादा एहतमाम के साथ कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये जो अल्लाह की तरफ ध्यान है ना, ये इंसान को बड़ा काम आता है, ठीक है। और अल्लाह ताला की जो जो अजमत है ना, उसको सामने रखना ये इंसान के लिए लाजिमी है। वरना हम बहुत सारे काम जो है वो इंसानों की अजमत को सामने रख के तो बड़े अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे बन जाते हैं ना हम किसी की यानी किसी ऐसे शख्स की लान तान को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, हम किसी ऐसे शख्स की जो है ना वो टीज को भी बर्दाश्त कर लेते हैं जिससे हमें खौफ होता है कि वो हमारे साथ बुरा करेगा अगर हमने उसके साथ बर्दाश्त का मामला नहीं किया। लेकिन जिन लोगों से हमें जो है ना वो कोई खौफ नहीं होता, ठीक है, तो हम उनकी किसी छोटी सी छोटी बात को भी बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। क्यों? इसलिए कि हमें उनका कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वो हमें कुछ नहीं कर सकते। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें उनके साथ बर्दाश्त का मामला करने के लिए कहा है, ठीक है, लेकिन हमें अल्लाह ताला की फिक्र नहीं होती, ठीक है। हम अल्लाह की खातिर किसी ऐसे शख्स से बर्दाश्त नहीं करते किसी बात को जिसके लिए अल्लाह ने कहा था कि इससे बर्दाश्त करना, तो हमारे नजदीक कौन ज्यादा अहम हुआ? दुनिया के छोटे छोटे इंसान ज्यादा अहम हुए ना, कि हम उनसे तो डर करके बड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि अल्लाह से डर करके हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब कोई हमसे कहे ना कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, तो हम कहते हैं जी बस क्या करूं, सर इतना गर्म है और क्या करूं, मुझे अपने गुस्से पे काबू है ही नहीं, मुझे अपने गुस्से पे काबू नहीं है। तो भाई उस शख्स के सामने आपने अपने गुस्से पे कैसे काबू कर लिया जिससे आपको किसी तकलीफ का अंदेशा था? वहां भी तो आपने अपने गुस्से पर काबू किया ना, तो फिर आपने दूसरी जगह पे अपने गुस्से पर काबू क्यों नहीं किया जहां पे आपको तकलीफ का अंदेशा नहीं था, है? सीधी सी बात है कि आपको तो अपने गुस्से के ऊपर काबू है लेकिन सेलेक्टिव काबू है। आप इंसानों की खातिर तो अपने गुस्से पर काबू रख लेते हैं, अल्लाह की खातिर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। रीजन सिर्फ यही है कि अल्लाह की अहमियत नहीं है दिल में, अल्लाह की अहमियत दिल में नहीं है, ठीक है। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब कभी हमसे ये गलती हो, ठीक है ना, कि हमने इंसान की खातिर तो अपने गुस्से पे काबू कर लिया लेकिन जहां पर इंसान का डर नहीं था वहां पे हमने अपने गुस्से पे काबू नहीं किया, तो सबसे पहले अल्लाह ताला से माफी मांगे, सबसे पहले अल्लाह ताला से माफी मांगे कि ए अल्लाह मैंने कितना बुरा किया कि मैंने किसी छोटे से इंसान की खातिर तो अपने गुस्से पे काबू कर लिया लेकिन इंसानों के परवरदिगार की खातिर आपकी खातिर मैंने अपने गुस्से पे काबू नहीं किया। ए अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, ए अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, सबसे पहले तो माफी मांगना, अगर माफी नहीं मांगी ना तो फिर आप कभी भी इसको सही नहीं कर सकते। सबसे पहले तो माफी मांगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दूसरी चीज क्या मांगे। माफी मांगने के बाद दूसरी चीज क्या मांगते हैं भाई अल्लाह ताला से, ये आप बता दें, जब तक हम इनका मैसेज पढ़ते हैं। और थोड़ा सा मुझे लोकेशन भी जरा चेंज करने की जरूरत है जी। सवाल यह है कि माफी मांगने के बाद दूसरी चीज अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं। जी मेरी आवाज भी आप लोगों को आ रही है या बस मैं ही बोले चले रहा हूँ, आवाज किसी को नहीं आ रही। मुश्किल सवाल तो नहीं किया सर। अब आ रही क्या मतलब है, पहले नहीं आ रही। तो भाई सवाल किया था कि अल्लाह ताला से माफी मांगने के बाद दूसरी चीज क्या मांगते हैं। तौफीक हिदायत दुआ मांगते हैं। माफी भी जो है ना ये भी दुआ का हिस्सा ही है, तो इस वजह से दुआ कोई अलग चीज नहीं होती जी। तौफीक अता कर दें, किस चीज की तौफीक अता कर दें। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको तौफीक के लिए क्या इस लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें बंदगी का इजहार होता हो, अपनी आजजी का इजहार होता हो, वो लफ्ज किसी के जहन में नहीं आ रहा। आसानी, मगफिरत, जो जी में आए बोलना शुरू कर दें, मदद, कितना मुश्किल लफ्ज था, अल्लाह अकबर इतनी देर में आया, मदद मांगनी है अल्लाह ताला से, ठीक है, कि अल्लाह आइंदा मैं ये काम ना करूं उसके लिए मेरी मदद फरमा दीजिए, आपकी मदद के बगैर मैं नहीं कर सकती ये वाला काम, या मैं इससे नहीं बच सकती कि मैं आपके मुकाबले में आपके बंदों को ज्यादा अहमियत दूं, आपके मुकाबले में आपके बंदों को ज्यादा अहमियत दूं अपनी जिंदगी में, आपने अगर मेरी मदद नहीं करी ना तो मैं कभी भी इस गलती से नहीं बच सकती। तो सबसे पहले माफी मांगनी और उसके बाद फिर मदद मांगनी, ठीक है जी। बहरहाल तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नीज ये ख्याल करो कि किसी आदमी के कहने से मैं बना सवार कर पढ़ता हूँ तो अल्लाह ताला के फरमाने से तो खूब एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि अल्लाह ज्यादा मुस्तहिक है इस बात का कि उसके सामने एहतमाम से पढ़ा जाए। ये सब बातें सोच कर अब पढ़ना शुरू करो और जब तक पढ़ते रहो यही बातें जहन में रखो, और जब पढ़ने में बिगाड़ होने लगे या तवज्जो इधर उधर बटने लगे तो थोड़ी देर के लिए पढ़ना रोक कर इन बातों के सोचने को फिर ताजा कर लो। सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन हजरत ने यानी टिप अता फरमाई है, हमें दी है कि इसी ध्यान के साथ कुरान मजीद पढ़ते रहो, और जब ये ध्यान तुमसे दूर हो जाए ना यानी गफलत तारी हो जाए और बस जो है वो ऐसी गफलत के साथ जो है वो पढ़े चले जा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और फिर से ये ध्यान बना लो, ठीक है ना, इसको ताजा कर लो। जिस तरह से वुजू टूट जाता है ना तो वुजू को ताजा करना पड़ता है ना, तो उसी तरीके से ध्यान भी इंसान का टूट जाता है तो ध्यान को ताजा करना होता है, ठीक है ना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी हमें हुक्म फरमाते हैं वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, है ना, अल्लाह ताला को फिर से याद कर लो जब तुम भूल जाओ। इज़ा नसीत, नसीत का मतलब जब तुम भूल जाओ, ठीक है ना,
तो गोया के ध्यान को भी फ्रेश करना पड़ता है, ध्यान को भी ताजा करना पड़ता है, जिस तरह वुजू को ताजा करना पड़ता है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से सही और साफ भी पढ़ा जाएगा और दिल भी उधर मुतवज्जे रहेगा। अगर कुछ मुद्दत तक इसी तरह पढ़ते रहोगे तो फिर आसानी से दिल लगने लगेगा। ठीक है, हजरत ने यानी बड़ी हकीमाना बात फरमाई, जिसका ताल्लुक जो है वो यानी हिकमत और दानाई के साथ भी है, और जो कि एक तरह से एक मेडिकल चीज भी आप कह सकते हैं, मेडिकल टिप, ठीक है ना, मेडिकल गाइडेंस भी, कि इंसान की जो यानी जिसको साइकोलॉजिकल गाइडेंस या इवन साइकैट्रिक टिप भी कह सकते हैं, कि इंसान जो है ना वो अपने आदात का असीर होता है। सुना होगा ना आपने, इंसान अपनी आदत का असीर होता है, आदत का गुलाम होता है, असीर का मतलब इंस्लेव्ड, ठीक है ना। तो जब कोई आदत बन जाती है ना, तो अब जो है ना वो यानी उसकी जिसको तबीयत सानिया भी कहते हैं, सेकंड नेचर बन जाती है। तो हजरत यहां पर ना बेसिकली हमें इन अच्छे अखलाक को आदत बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि तुम अगर ऐसे 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 करते रहोगे ना, तो ये अच्छा इखलाक अखलाक जो है ना, अच्छा खुल्क जो है ना, ये तुम्हारी आदत बन जाएगा और फिर तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप किसी भी चीज को देख लें अपने, फॉर एग्जाम्पल किसी की आदत है बाएं हाथ से खाना, ठीक है, तो अगर कोई छोटा बच्चा है तो अगर माँ बाप उसको याद दिलाते रहें अच्छे अंदाज में, है ना, बाएं हाथ पे मार मार करके नहीं, कुछ माँ बाप जो है ना वो अपने बच्चे को लेफ्टी से राइटी बनाना चाहते हैं खाने के मामले में, खाने के मामले में राइट हैंड से खाना जो है ना वो बच्चे को सिखाना चाहिए, ठीक है ना। लेफ्टी क्यों होता है इंसान, लेफ्ट हैंड से क्यों खा रहा होता है, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड के अंदर ज्यादा पावर होती है, तो इस वजह से वो बच्चा जो होता है ना वो ज्यादा आसानी से अपने बाएं हाथ से काम कर सकता है, तो वो जाहिर है फिर हर काम अपने बाएं हाथ से करता है, ठीक है ना। खाने के मामले में उसको दाएं हाथ की आदत डलवा देनी चाहिए। ये एक ऐसा काम है खाना खाना जिसके अंदर ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है, तो इस वजह से ना एक लेफ्टी इंसान वो राइट हैंड से खाना खा सकता है, लेकिन आदत बनानी पड़ती है। ठीक है, तो उसकी आदत बनाने के लिए फिर क्या करना होता है, उसको याद दहानी करवानी पड़ती है, तो माँ बाप याद दहानी कराते रहें, मारपीट और गुस्सा नहीं नहीं करें उसके ऊपर, याद दहानी करवाते हैं, बेटा राइट हैंड, है ना। हमारे चार बच्चों में से मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल तो नहीं मतलब यकीन है कि तीन तो लेफ्टी हैं, ठीक है ना, लेकिन तीनों के तीनों जो है ना वो राइट हैंड से खाना खाते हैं। सबसे छोटी वाली जो है वो अभी भी गलती कर जाती हैं, तो जैसे ही उनको देखते हैं हम फौरन कह देते हैं राइट हैंड, सीधा हाथ से खाना था, वो फौरन से सीधे हाथ पे स्विच कर लेती है। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी दो के साथ भी हम यही हमने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना वो आदत बन जाती है सीधे हाथ से खाना, अब जो बड़े हो गए वो सीधे हाथ से ही खाते हैं। ठीक है, अगर कोई बड़ा इंसान जिसकी कि बचपन में आदत ना बनाई गई हो, तो अब उसको जब बात समझ में आती है कि हाँ भाई खाना तो सीधे ही हाथ से खाना था, मैं उल्टे हाथ से खाता रहा, तो उसको कोई दूसरा इंसान तो नहीं टोकेगा, क्योंकि वो तो खुद बड़ा आदमी है, तो अब उसको खुद अपने आप को टोकना पड़ता है ना, तो खुद अपने आप को जब टोकता रहता है, जैसे ही ध्यान आए कि मैं तो उल्टे हाथ से खा रहा हूं, वो फौरन जो है वो सीधे हाथ पे स्विच कर ले, तो ऐसे क्या होता है कि उसके लिए सीधे हाथ से खाना खाना फिर आदत बन जाता है, अब उसके लिए आसान हो जाता है सीधे हाथ से खाना खाना, ठीक है ना। तो यही मामला जो है ना, यही उसूल हर चीज के अंदर अप्लाई होता है। तो कुरान भी ध्यान से पढ़ने के लिए अपने आप को अपनी आदत बनाना कि ध्यान जो है ना वो उसके अंदर कायम रहे, ये फिर आदत बन जाती है, तो फिर इंसान के लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, कुरान मजीद की तिलावत का चूंकि यहाँ पे हजरत ने खाली जिक्र किया है और यानी इसके मानी का यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, तो इस वजह से हम इसको तिलावत ही की हद तक रखते हैं कि तिलावत बना करके करना, अच्छे से करना, और जाहिर है तजवीद अगर आपकी गलत है तो तजवीद सीखना भी इसके लिए लाजिम है। ठीक है ना, ताकि आपके जो है ना वो अल्फाज की अदायगी सही हो सके। ठीक है, सा और सीन में फर्क, सा तीन नुक्तों वाला और सीन में फर्क हो, ठीक है, और जाल और जा, ठीक है, इन इनके अंदर फर्क हो, सही है। तो बुनियादी तजवीद जो है वो हर इंसान को सीखनी पड़ती है, तब उसकी कुरान की तिलावत जो है वो सही हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अभी भी ये रिवाज है कि बच्चों को सबसे पहले जो है वो कारी साहब के पास बिठा करके कुरान मजीद की तिलावत सिखाते हैं। तो वो कुरान मजीद पढ़ना शुरू करता है, कायदे से नूरानी कायदा होता है या किसी और का लिखा हुआ कायदा होता है। तो अगर उम्र गुजर गई है, खुद पढ़ना नहीं सीखा, तो कोई बात नहीं, बड़े होकर के कुरान मजीद किसी कारी साहब के साथ बैठ करके पढ़ना सीख लें। ठीक है, फिर जहाँ पे तदब्बुर की बात आती है तो वो फिर अगला स्टेप है कि कुरान जब अच्छे से पढ़ना सीख लिया तो फिर उसके मानी सीखना शुरू करें, जिसके लिए फिर अरबी ग्रामर थोड़ी बहुत सीखनी लाजमी होती है। थोड़ी बहुत अरबी ग्रामर, सर्फ और नहव जिसको कहते हैं ना, अरबिक अरबिक ग्रामर एंड अरबिक कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो उसकी बहुत ही प्यारी प्यारी बुनियादी किताबें हमारे अकाबरीन ने लिखी हुई हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से ना उनको स्ट्रक्चर करके सर्फ और नहव जो उन्होंने उन किताबों के अंदर सिखाया हुआ है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो बुनियादी सर्फ और नहव जो है ना वो पढ़ ले, ठीक है ना। उसके लिए आपको किसी एक उस्ताद की जरूरत है, किसी एक उस्तानी की जरूरत है जिसने कुछ सर्फ नहव पहले से पढ़ी हुई हो, जिसको अरबी जुबान वगैरह थोड़ी बहुत आती हो, बस वो आपको सर्फ नहव पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये सर्फ नहव पढ़े बगैर आप जो है ना वो अरबी जुब यानी कुरान मजीद के मानी इवन बुनियादी तौर पर भी नहीं समझ सकते, ठीक है ना। उर्दू तर्जुमा पढ़ पढ़ करके कुरान मजीद नहीं समझा जा सकता, सर्फ नहव जो है ना वो बुनियादी आपको लाजमन पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आसानी इसके अंदर यह है कि सर्फ नहव बहुत आसान है, पहली बात, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा तफसील पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जो कि उलमाए कराम पढ़ते हैं ना सर्फ नहव, वो तो बहुत डिटेल में जाते हैं, कई किताबें होती हैं सर्फ की भी और कई किताबें होती हैं नहव की भी, ठीक है। इतनी एक आम आदमी को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। इल्मु सर्फ अवलैन आखरैन, बल्कि आखरैन भी पूरी नहीं, सिर्फ जो है वो यानी आधी आखरैन पढ़ लें, पूरी अवलैन पढ़ लें, और इल्मु नहव एक किताब है, पतली सी किताब है, दोनों पतली पतली किताब है, तो वो जो है ना किसी उस्ताद के साथ पढ़ लें, तब आप जो है वो कुरान मजीद के मानी को समझ सकेंगे। वो कैसे समझ सकेंगे? वो ऐसे कि जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे ना, यानी तर्जुमे की तो आपको फिर भी जरूरत पड़ेगी, तर्जुमे की आपको फिर भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप तर्जुमे को कुरान मजीद की आयत के साथ जो है ना वो अच्छी तरीके से रिलेट करके समझ सकेंगे, ठीक है ना। सिर्फ यानी ऐसे जैसे कि आप चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई हो, ठीक है ना, अब चाइनीज लैंग्वेज का तो आपको अलिफ बात आप कुछ भी नहीं पता ना, तो आप उसका तर्जुमा पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो तर्जुमा ऐसे है कि जैसे बस वही आपको पता है, आपको चाइनीज लैंग्वेज का तो एक एक डंडा भी नहीं पता है कि उसे एक डंडे का क्या मतलब होता है, वो डंडों को भी मिला मिला करके बनाई हुई होती है ना, चाइनीज जापानीज और इस तरह की जितनी भी एशियन लैंग्वेजेस हैं, ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस, ठीक है, तो आपको तो एक डंडे का भी नहीं पता है कि उसका क्या मतलब है, एक जो डैश लगा हुआ है उसका कुछ नहीं पता क्या मतलब है, आप सिर्फ और सिर्फ तर्जुमे के ऊपर 100% डिपेंडेंट हैं, ठीक है। लेकिन कुरान मजीद के साथ ऐसे नहीं, कुरान मजीद में जो है ना वो हम बहुत आसानी के साथ हम सर्फ नहव जब पढ़ लेते हैं तो कुरान मजीद के अल्फाज को उनसे रिलेट करना जो है ना तर्जुमे के साथ रिलेट करना ये बहुत आसान हो जाता है। कुरान मजीद स्पेशली जिन लोगों को उर्दू आती है, ठीक है ना, तो उर्दू जुबान के तो अल्हम्दुलिल्लाह रस्म उल खत भी अभी तक अरबी रस्म उल खत में ही है, और कुरान मजीद के बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना बुनियादी सर्फ नहाव पढ़ने के बाद आप अल्फाज को मानी के साथ जोड़ने के काबिल हो जाते हैं और ये बहुत आसान हो जाता है, और फिर कुरान मजीद पढ़ने का एक अलग ही लुत्फ और एक अलग ही फायदा होता है। लुत्फ के लिए तो वैसे भी खाली हम नहीं पढ़ते हैं, फायदे के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर हम ये आज की क्लास रोकते हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए अगली क्लास के अंदर, तो इसको रोक करके, बल्कि मुझे याद आया कि किसी ने सवाल भी लिखा हुआ तो हमारा रह गया लोकेशन चेंज करने के चक्कर में। इन्होंने क्या लिखा है, आप कोई ऐसा शॉर्ट कोर्स डिजाइन अगर कर दें बेसिक अरबिक के लिए, बिकॉज इट्स वे बेटर इफ यू लर्न विद टीचर लाइक वी डिड मसाइल कोर्स, तजवीद कोर्स, बहुत फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ कीजिए आप हमारे लिए भी कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए, यानी ऐसे हालात बना दे। दिल में तो अल्हम्दुलिल्लाह बात डाली भी अल्लाह ताला ने काफ़ी पहले से ही, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे हालात बना दे, ऐसे वसाइल जो है वो मुहैया फरमा दे, तो डेफिनेटली ये वाला काम हमें करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ऊपर जो एक किसी ने मैसेज लिखा था वो क्या था कि झूठ बोलना तो कबीरा गुनाह है। ये किसी ने सवाल लिखा था कि झूठ बोलना तो कबीरा गुनाह है, और एक इंसान किसी को अपनी तबीयत के बारे में हर लोग को बताना पसंद नहीं, बट फिर भी लोग उसकी मोहब्बत में, उसके ख्याल में उसकी तबीयत वगैरह के बारे में पूछें, और तब मैं बोलूं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ये गलत है, और अगर गलत है तो फिर क्या किया जाए इसके लिए। अच्छा, जैसे झूठ बोलना जो है वो गुनाह है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है कि आप को इस बात की फिक्र लग गई है कि झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। ठीक है, और अब आप ये नेक्स्ट चीज सोच रही हैं कि मैं कैसे बचूं झूठ से। ठीक है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तौफीक होती है, और खुसूसन आज के जमाने में ना ये बड़ी मुश्किल से नजर आती है कि किसी को झूठ की फिक्र लग जाए। ठीक है ना, आज तो हम बेफिक्र होकर के झूठ बोलते हैं और झूठ को सबसे हल्की चीज समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आपका सवाल ये है कि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन लोग आपसे पूछ रहे हैं कि सुनाइए कैसी तबीयत है आपकी, और आप नहीं चाहते कि हर एक को जो है वो अपनी खराब तबीयत के बारे में बताएं, तो आप झूठ से बचते हुए कैसे इस बात का जवाब दें। ठीक है, तो इसका जवाब जो है ना वो ठीक है देने की बजाय आप बस इतना जवाब दें कि अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी तबीयत जैसे कि एक नॉर्मल इंसान, सेहतमंद इंसान की तबीयत होती है वैसी नहीं है, लेकिन आपको उसे बताने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है ना, लेकिन उस तबीयत की खराबी के बावजूद अल्लाह ताला के एहसान तो आपके ऊपर अनगिनत हैं, है ना, अनगिनत एहसान आते हैं एक बीमार आदमी के ऊपर भी, तो उनके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही है, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने बहुत सारी मुसीबतों से बचा के रखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो कि आप कह सकती हैं कि जिससे कि ना अगला बंदा जो है वो भी मुतमईन हो जाए, उसको सवाल का जवाब मिल जाए, वो आपको मजीद कुरेदने से यानी ठीक है ना, मतलब नहीं, वो अगर वो ये कहे नहीं, मुझे बताओ कि तुम्हारी वो वाली तबीयत कैसी है, तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, या यानी अगर वाकई पहले से थोड़ी सी बेहतर है तो आप बोल दें अल्लाह अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत बेहतर है, या ये कि बस कहते हैं कि बस उसकी हम इलाज वगैरह चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इलाज वगैरह चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जवाब दे करके अगले बंदे को जो है ना वो फारिग करें। ठीक है, उम्मीद ये है कि फिर ज्यादा लोग रहती भी नहीं है, उनको ज्यादा परवाह भी नहीं होती, बस वो इखलासन आपसे इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं, और अगर नहीं है तब भी वो पूछ रहे हो, क्या नहीं है तब भी वो पूछ रहे हो, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तब भी वो पूछ रहे हो, क्या कहना चाहिए, तबीयत ठीक है तो वो पूछ रहे हो तो फिर तो और भी ज्यादा अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक तो भाई आपको फिर माइंड करने की क्या जरूरत है, अगर वो पूछ रहे हैं तो अपना इखलाकी फरीजा अदा कर रहे हैं दूसरों की तबीयत पूछना। ठीक है ना, और वैसे भी ये एक आम बोलचाल के अंदर भी के अंदर ये एक अच्छी आदत है कि दूसरों से उनकी तबीयत वगैरह दरियाफ्त करते रहना, इसका ना तो इसको माइंड करना चाहिए और ना इसके ऊपर जो है ना वो आपको कोई बहुत ही एक्सप्लिसिट आंसर देने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लिसिट आंसर देने की। ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, अब जो है वो हम 1-2 मिनट की ब्रेक लेकर के फिर उसके बाद मिसाली बहू की क्लास शुरू करते हैं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।